प्रमोशन कर रहे हैं। मैं आपको चंद एक स्पॉन्सर्स की जानिब लेके जाना चाहती हूँ। प्लीज स्टे ट्यून्ड। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778। हाँ, मैं आपसे जिक्र कर रही थी, टिवाना साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया सर आपका, और सिकंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बस दो लोगों की कॉल थी, मैंने उनका जिक्र कर दिया। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778 हमारे स्टूडियो का नंबर। वी लुक फॉरवर्ड 4:05 पे जस्टिस मार्कंडे हमारे साथ होंगे। चंद एक कमर्शियल्स, वेलकम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
क्योंकि मजबूत आंढ गुआंढ ही तां सुरक्षित आंढ गुआंढ हन। आओ कैनेडा नूं मजबूत बनाइए।
परदेसी निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं आपके 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling paint ko remove karke bedagh karenge, texture style painting which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain to call kijiye texture style painting ke liye Painters of GTA 647-271-1974. Mohammed Salim 647-271-1974.
Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman. अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, वाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवर, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 905-820-0900, 905-820-0900।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस तो बहुत महंगी है। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 इयर्स ऑफ अंडररराइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 इयर्स इन द फील्ड। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
अयो, इतना खूबसूरत घर!
आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो राबता करो, एक जीता मेरे हाथ में लगा।
क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब!
कौन सी रेनोवेशन? टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता ना करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं। बहुत मुनासिब दाम है, और भाई आजमाइश शर्त है, गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल अली 416-838-7837, 416-838-7837।
भाई सस्ता ला ला, इंज कर, तू 6 दी बजाय 5 ले ला।
ओहो सरला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां, सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फलो फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां, सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म, कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मिन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659, 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
जी साहब, जैस्मिन परमार के बारे में आपने सुना। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको यंग मैन के बारे में जिक्र कर रही थी। समर आने का है, दिल चाहेगा बाहर बैठने के लिए भी, मौसम अच्छा होगा। अगर आपके घर में फेंस है, अगर आपके घर में डेक है, छोटा है बड़ा है, आप उसको पेंट या स्टेन करना चाहते हैं, तो एक नाम मैंने आपको दिया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल कीजिएगा, कंसल्टेशन लीजिएगा। अगर इवन आपका ऑफिस है और आप अभी, आप आजकल मैं बहुत सारे घरों को ग्रे देख रही हूँ, या ऑफिसेज की बिल्डिंग्स जो हैं उन्होंने अपने आप को यूनिक कलर दिया है, तो आप कॉल करें। इनका नाम मोहम्मद सलीम है। वंडरफुल मैन, वंडरफुल यंग मैन। दिस इज नॉट कि ही इज अ रुकी, ही इज नॉट रुकी, ही इज एन एक्सपर्ट। आज से नहीं, साल हर साल से पेंट के बिजनेस में है। कोई स्क्रैच नहीं, कोई स्पिल नहीं होगा, कोई स्पॉट्स फ्लोर के ऊपर आपको स्पॉट्स नहीं नजर आएंगे। हर चीज को कवर करके, इवन अगर आपके घर में कहीं वाटर लीकेज हुई है, तो उसके लिहाज से वो येलो स्पॉट्स जो सीलिंग पे पड़ते हैं उनको खत्म करेंगे। मोहम्मद सलीम मेरे साथ है। इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट, आपका फेंस है, आपकी जिंदगी बढ़ती है, ऑफ कोर्स लकड़ी की जिंदगी बढ़ती है, तो फेंस को या पोर्च को स्टेन या पेंट करने के लिए आप रابطہ कीजिएगा। मोहम्मद सलीम इनका नाम है। सलीम बेटा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बच्चा?
वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी।
अच्छा, कब से पेंट के बिजनेस में? आई नो यू आर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी डिड एडवर्टाइज यू जब आप हमारे साथ आए थे, मगर फिर
10 साल से काम कर रहे हैं।
10 साल से आप पेंट के बिजनेस में। अभी आपने कहा कि इंटीरियर या एक्सटीरियर, अगर आपकी स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, आपका अपना ऑफिस है, तो इवन आपने अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग को चेंज करना है, तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज बताइए सर
जी। किसी भी किस्म का इंटीरियर काम हो, एक्सटीरियर हो, डेक हो, स्टेन हो, फेंस हो, इवन पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव कर देते हैं जी, वॉलपेपर रिमूव कराना हो, वाटर डैमेज हो, गैराज पॉक्सी करानी हो, किसी भी किस्म का पेंट।
हाँ, ये नई चीज बताई है। बाज़ूकात अगर आप अपने गैराज को एपॉक्सी करा जी, बड़ा खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, वो भी आप करते हैं?
जी जी,
वेरी गुड। अगर आपने एपॉक्सी करानी है, और बताइए सर।
और किसी भी वॉलपेपर आपने रिमूव कराना हो जी, वॉलपेपर रिमूव करके देते हैं जी किसी, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होता है हमारा। मतलब किसी किस्म का ये नहीं होता कि मतलब जिस तरह का आपको फ्लोर होगा आपको उसी तरह का फ्लोर मिलेगा, कोई एक स्पॉट आपको फ्लोर के ऊपर नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होगा।
सही। अच्छा, पेंट जब करते हैं तो अगर आप चाहें तो सिर्फ बेसबोर्ड नहीं पेंट करने, आप सिर्फ को करके कलर कलर स्कीमिंग में भी आप हेल्प करते हैं, कंसल्टेशन कैसे आपके साथ पॉसिबल है?
बिल्कुल, मतलब हम बता देते हैं कि मतलब कलर बुक भी देते हैं, आप पसंद करें, जो फेमस कलर चल रहे होते हैं वो भी बताते हैं कि ये आजकल जो फेमस कलर चल रहे हैं, और जो भी दीवारें होती हैं, जब ये मतलब हम घर पेंट करते हैं दीवारों के साथ जो होती है ना बेसबोर्ड जी, वो इंक्लूड होती है। ये वो नहीं होता कि लोग अक्सर लोग कहते हैं जी आपने बेसबोर्ड कराने की नहीं कराने, वाल करानी है, वाल करानी है कि नहीं, वाल जब भी हम वाल करते हैं वाल में हमारा बेसबोर्ड इंक्लूड होता है।
अच्छा, वॉल में आपका बेसबोर्ड इंक्लूड होता है,
क्योंकि जब दीवार आपकी फ्रेश हो जाएगी तो बेसबोर्ड आगे से नीचे से मतलब या येलो ही होगी या थोड़े बहुत उसके स्पॉट होंगे, दाग होंगे, तो वो तो फ्रेश नहीं नजर आएगी, तो मतलब वाल जो बेसबोर्ड है उसको हम साथ करके देते हैं, इंक्लूड होती है उसमें, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। फिर वो
बहुत
वाल वहां जी वो कालकिन साथ बांध देते हैं, मतलब नेल और फिल करने होते हैं सारा, मतलब बिल्कुल सारा फ्रेश हो जाता है।
मोहम्मद सलीम साहब, आप अपना नंबर बच्चे अपना नंबर दो, आप कंसल्ट कीजिएगा। आप अपने ऑफिस को पेंट करना चाहते हैं, घर को पेंट करना चाहते हैं, कलर स्कीम में आपको हेल्प करेंगे, फेंस को, या फिर अगर आप अपने डेक को, यू नो यू विल फील गुड, और आपके फेंस और डेक की उम्र भी ज्यादा होगी। नंबर दीजिए प्लीज।
मेरा नंबर है 6472711974।
बहुत शुक्रिया। 271974, 271974 आपका नंबर है। बहुत शुक्रिया सर आपका,
थैंक यू।
ये तो मैंने आपकी बातचीत कराई जनाब मोहम्मद सलीम साहब से, मैंने आपकी बातचीत कराई। अब मैं एक और शख्स से बात करना चाहती हूँ। مجھے آج کل ذاتی طور پہ میں محسوس کرتی ہوں کہ ہم زندگی کی ایک سٹیج تھی جس میں انسان چیزوں یو نو اٹ مائٹ لک فنی بٹ اٹ از اے فیکٹ کہ دیر از ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان گھر کے لیے یہ شوق ہوتا ہے یہ شوق ہوتا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری جگہوں کو ہمارے آنے والی جنریشنز ان کو ٹیک اوور کرتی ہیں. بعض اوقات پلاننگز بہت ضروری ہے. میں آج مجھے کیوں یاد آیا ان کا انٹرویو کرنا, آئی واز تھنکنگ اباؤٹ ہم ٹوڈے مارننگ کہ فائنینشیل پلاننگ کتنی امپورٹنٹ ہے. سے آپ کے پاس پراپرٹی ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹیز بھی ہیں, بعض اوقات بچوں کو ہم بچہ چاہے بچہ بڑا بھی ہو جائے شادی بھی ہو جائے تو ماں کہتی ہے بچہ ہی ہے حال لیتے تو ہم نہیں انوالو کر رہے ہوتے. مگر یہ کینیڈا کا سسٹم ہے, اٹس اے ڈفرنٹ سسٹم. وہ جو میری ول میں ہے ڈیفینیٹلی اس میں بھی دیر آر چیزیں چند دیر کے لیے ہالٹ ہوں گی ضرور. فائنینشیل پلاننگ کے لیے آف کورس ہماری کمیونٹی میں جناب فضل ودود صاحب کا میں نام دیتی ہوں. انشورنس, فائنینشیل پلاننگ, دیز آر آل امپورٹنٹ تھنگ. یہ نہیں کہ بھائی مرنا ہی ہے تو میں نے انشورنس چاہیے, بلکہ میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جو جس حساب سے ٹیکنالوجی ایڈوانس کرتی چلی جا رہی ہے, آف کورس وہ کہتے ہیں نا اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچوں کو زندگیاں دے, بچوں کے بچوں کو زندگیاں دے. مگر آگے آگے انشورنس کمپنیاں, ہماری لائبلٹیز بڑھتی چلی جاتی ہیں مگر انشورنس کمپنیوں نے آگے آگے, ہو سکتا ہے کہ آج تو انشورنس دینے کے لیے وہ آپ کا اور میرا بلڈ ٹیسٹ لیتے ہیں, یورن ٹیسٹ لیتے ہیں, کل کلاں کو ہو سکتا ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ لینا شروع کر دیں. ابھی اس پہ پابندیاں ہیں مگر آپ کو میں, کلوننگ پہ بھی تو پابندی ہے نا, مگر اندر کھاتے سائنٹسٹ کلوننگ بھی کر رہے ہیں. اچھا فضل ودود صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, بڑا آسان سا نمبر ہے 905-607-5000 مشورہ دیوار سے بھی کر لینا چاہیے. میرے ساتھ جناب فضل ودود انشور پرو کے ساتھ, ہی از اے بروکر, ہی واز انڈر رائٹر فار 25 years, مطلب یہ مت سچے عمر بہت زیادہ ہوگی, اسٹل یگ ایٹ ہارٹ. فضل بدود صاحب السلام علیکم. سر
جی وعلیکم السلام. یا یو کریکٹلی سیڈ اٹ, یگ ایٹ ہارٹ,
یگ
ادر وائز کوئی حال نہیں.
Let me tell you, this age is a number. I believe, اگر there are few things which are self-inflicted. آپ کو پتا ہے کینیڈا میں, آج تو مجھے نہیں پتا, آج سے 30 سال پیچھے میں چلی جاؤں تو کینیڈا میں ڈپریشن واز ناٹ کورڈ. ڈپریشن کے بارے میں جب کلیم جاتا تھا تو انشورنس کمپنیاں کہتی تھی اٹ از اے سیلف انفلیکٹڈ کنڈیشن, تو ڈپریشن نہیں کور ہوا کرتا تھا. اسی طرح جب آپ نے پالیسی لی تو پہلے 2 سال میں اگر آپ سوئسائڈ, اگر میں سوئسائڈ کر لوں, آپ نہیں میں سوئسائڈ کر لوں تو اٹ از ناٹ کورڈ. مگر 2 سال کے بعد, 2 سال میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ڈپریشن آیا سوسائڈ کر لی, اب انشورنس پے نہیں کرے گی, بٹ لیٹر آن اٹ از کورڈ. تو بہرحال اسی حوالے سے مشورہ کیجئے گا, آپ ان کو گھر بلائیے, ان کے دفتر میں آئیے. فضل ودود صاحب جی, سر بتائیے آپ اپنی کمپنی کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنا ایکسپیرینس ایز این انڈر رائٹر, اینڈ وٹ یو کین ڈو وٹ ادر کی ناٹ ڈو.
ایبسولوٹلی, دیکھیں جی آپ نے بجا فرمایا 24-25 سال ایز انڈر رائٹر ان ٹو ڈفرنٹ پوزیشنز, جس میں لاسٹ 15 سال اس کمپنی کا میں ہیڈ تھا انڈر رائٹنگ کا, جہاں پہ 300 آن این ایوریج ڈیلی انشورنس اپلیکیشنز انڈر رائٹ اور اپروو ہوتی تھی, ان پہ فیصلے ہوتے تھے. ساری اپروو نہیں ہوتی تھی, اپروو بھی ہوتی تھی, ڈیکلائن بھی ہوتی تھی. اور ہمارا سلوگن تھا کہ ہر گھنٹے میں ایک کلیم پے کیا جاتا ہے. تو آئی واز ہیڈ آف دوز ایریاز, تو میں کیا ڈفرینٹلی کر سکتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا مجھے سیگوے دیا, میں بات بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک میڈیکل کنڈیشن ہو گئی ہے, اب وقت گزر گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو بات کرنی ہے کسی اس سے جو کام جانتا ہو. دیر آر ویری گڈ ایڈوائزرز آؤٹ دیئر, لیکن میری اسپیشلٹی جو ابھی آپ کا کوشچن تھا کہ میں کیا ڈفرینٹ کر سکتا ہوں, وہی ڈفرینشیشن جو ہے وہی لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ 24 سال जिस वक्त एज चीफ अंडर राइटर और अंडर राइटर काम कर रहे थे, तो हमें पता है, मुझे पता है जाती तौर पे कि पॉलिसीज डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस में किस तरह अंडर राइट होती हैं। अभी आपने फरमाया दो चीजें, एक जेनेटिक टेस्टिंग और दूसरी बात डिप्रेशन की। इत्तेफाक की बात है कि आपकी कॉल से थोड़ी देर पहले एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, रियल्टर है, वो अपना केस मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन है, तो इज ही कवर्ड और नॉट। तो मैं उनको यही बातें बता रहा था कि बदल चुकी है मेडिकल साइंसेज, कंट्रोल बदल चुके हैं, बहुत से लोग एंग्जाइटी तो कोई इशू ही नहीं है। अभी आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक आपको इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई करना पड़ी, आपका आप एंक्शियस हो जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी लेवल चेंज हो जाएगा, बॉस ने बुला लिया, एंग्जाइटी लेवल हो गया, बिल्स पे नहीं हो रहा है, इनकम नीचे चली गई है, एंग्जाइटी हो जाती है, बेगम ने आवाज दी है उसमें भी अक्सर एंग्जाइटी हो जाया करती है। तो कहने का मकसद यह है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी जो है वो ऐसी कंडीशन है, लोग साल हा साल से फॉर इंस्टेंस एफेक्सोर के ऊपर है। इसी तरह डायबिटिक लोग, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में डायबिटीज ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। मेरे पास बेशुमार दफे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि ऑलरेडी इंश्योरेंसेस उनके पास हैं, बट दे आर पेइंग एक्स्ट्रा अननेसेसरीली हाई प्रीमियम्स। व्हाई? कि जो एडवाइजर उनकी हेल्प कर रहे थे वो अच्छे एडवाइजर थे, लेकिन उनका स्किल अंडरराइटिंग की तरफ नहीं है। तो जब मेरे पास क्लाइंट आता है, तो सिंस आई एम अ रिटायर्ड अंडरराइटर, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में चार बुक्स हैं जिसमें मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आज भी मैं अंडरराइटर्स के साथ अटैच्ड हूं और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। तो जब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको पहले अपने टेबल पे ही अंडरराइट करता हूं, और उसके बाद उसके केस को इस तरह प्रेजेंट करता हूं कि उनका केस अप्रूव भी हो और अच्छे रेट पे उनको मिले। तो मैसेज नंबर वन मेरा यही है कि बिल्कुल ये ना समझें कि जी अब हम हमारी कंडीशन हो गई है और अब हम हमें कोई कवरेज नहीं देगा। और अगर आपके पास कोई कवरेज है तो प्लीज मेरे से चेक करवा लें, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम एक चीज बोली जाती है सिंप्लीफाइड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज ने एक रेट निकाला हुआ है जिसमें जो मेडिकली हार्ड टू इंश्योर्ड लोग होते हैं, अक्सर एडवाइजर लोग, वो वाली कवरेज उन लोगों को दे देते हैं जो कि बहुत ही रिडिकुलसली एक्सपेंसिव होती है। फैमिलीज में लोग चूंकि मॉर्गेजेस वगैरह होती हैं, लोन्स लिए हुए होते हैं, तो वो मजबूरन वो इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपके पास ऐसी इंश्योरेंस है मुझसे चेक करवा लीजिए, और अगर आप ये समझते हैं कि शायद इट इज डिफिकल्ट टू गेट एन इंश्योरेंस, प्लीज डू कॉल मी 905-607-5000। लोएस्ट रेट्स की गारंटी बहुत से लोग देते हैं, लेकिन अंडर राइटिंग स्किल आई एम द ओनली एडवाइजर, गो गूगल, यू गोना फाइंड, जो कि अप टू द लेवल ऑफ चीफ अंडर राइटर काम करने के बाद पिछले 6-7 साल से अपनी कंपनी बना के 2-3 ऑफिस के साथ मैं काम कर रहा हूं। प्लीज कॉल मी एंड यू विल बी अमेज्ड कि जितने आप रेट्स समझ रहे थे, एक तो रेट्स वैसे नहीं है, और अगर आपको मेडिकली कोई कंडीशन है डू कॉल मी। और लास्ट, स्पेशल रेट्स फॉर द क्रिटिकल इलनेस मेरे पास आए हुए हैं, इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। उसमें यह है कि 3 महीने का प्रीमियम एडल्ट्स को वापस आ जाएगा, और बच्चों की क्रिटिकल इलनेस अगर आप लेते हैं तो 6 महीने का प्रीमियम साल के एंड पे आपको वापस मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम फबेन।
सर आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इंश्योर प्रो के फजर वदूद साहब से एक बार राब्ता कीजिएगा। किसी किस्म की आपको इंश्योरेंस टाइप डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, या आपके बाहर से इंडिया से या पाकिस्तान से रिलेटिव आ रहे हैं उनके लिए विजिटर इंश्योरेंस आपको चाहिए, तो फजल वदूद साहब अमेजिंग आप महसूस करेंगे, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, बेहतरीन आपको सजेशन देंगे। नंबर अपना एक बार फिर से दे दीजिए सर।
जी 905-607-5000। अगर किसी बहन भाई को क्लेम में प्रॉब्लम आ रही है, पॉलिसी किसी ने भी लिखी है, کال می آئی لو ٹو ہیلپ اگر میں کر سکا تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا پلیز کال می
بہت بڑی مہربانی بات کہی کیونکہ بعض اوقات کلیم میں ڈینائل ہوتا ہے اگر پالیسی میں کوئی ایک آدھ چیز غلط ہو تو آپ ایون اگر آپ کے اس معاملے سے بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو یو کین کال جناب فضل ودود 9056075000 ان کا نمبر ہے لیں جی مجھے اشارہ ہوا ہے کہ بی بی اب آپ چلتی ہوں اب چلتی ہوں شکر ہے میں صرف ریڈیو سے ہی چلنے کا کہا انہوں نے مجھے دنیا سے چلنے کا نہیں کہہ دیا کہہ سکتے ہیں تو مگر چند اسپانسرز ول کم بیک جسٹس مارکنڈے ہمارے ساتھ ہوں گے اب سے تقریباً 3-4 منٹ کے بعد اسٹے ٹیونڈ
اگر آپ $100 سے زیادہ بھیجیں تو سائن اپ کرتے وقت ریفرل کوڈ E10 استعمال کریں اور اپنی پہلی ٹرانزیکشن پر 10% کیش بیک حاصل کریں یعنی $500 بھیجنے پر $50 کیش بیک کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں واپس لیمپ فائی کی 10% کیش بیک آفر کے لیے آج ہی لیمپ فائی کی فری ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں وزٹ lampfai.com فار ٹرمز اینڈ کنڈیشنز
خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے آج ہی مجھے کال کریں آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے 4164106500157
اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں لیمپ فائی کے ذریعے پیسے پہنچے منٹوں میں وہ بھی آسان اور محفوظ طریقے سے گڈ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ $150 بھیجنے پر $0 فیس اس کے علاوہ اگر آپ $100 سے زیادہ بھیجیں تو سائن اپ کرتے وقت ریفرل کوڈ E10 استعمال کریں اور اپنی پہلی ٹرانزیکشن پر 10% کیش بیک حاصل کریں یعنی $500 بھیجنے پر $50 کیش بیک کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں واپس لیمپ فائی کی 10% کیش بیک آفر کے لیے آج ہی لیمپ فائی کی فری ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں وزٹ lampfai.com فار ٹرمز اینڈ کنڈیشنز
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے تو انتظار کیسا ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوئر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666 ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس
بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں چوڑیاں لے لو کڑے لے لو چینز لے لو سٹون جیولریز روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ 9056776888
حلال میٹ تے سبزیاں نالے پھل بھی تازہ ملدے ایتھے مچھلی انڈے دودھ دہی تے سستے چاول ملدے بھلے پکوڑیاں تازہ مٹھائیاں گرم سموسے ملدے بٹالا سپر مارکیٹ
سکار پورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکار پورو مارکم روڈ تے انگلنٹن دا سنگم فون 416-264-3111
گھر تک پیسے بھیجنا کبھی آسان نہیں رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے انڈیا میں بیٹھے آپ کے اپنوں تک صرف کچھ ٹیکس کے ساتھ جی ہاں جب آپ کی فیملی کو ہو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تب ٹیپ ٹیپ سینس دیتا ہے آپ کو گریٹ کمپیٹیٹو ایکسچینج ریٹس نہ کمپلیکیٹڈ فارمز کی چنتا نہ کوئی ہڈن فیس کا ڈر جسٹ ہمارا ایزی ٹو یوز ایپ اور پیسے سیدھا گھر
ڈاؤن لوڈ آر ایپ اینڈ یوز پرومو کوڈ ریڈیو 20 ٹو گیٹ این ایڈیشنل $20 آن یور فرسٹ سینڈ آف $200 اور مور ٹیپ ٹیپ اینڈ سینڈ
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو
گھر میں مہمان آ رہے ہیں
और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ा आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अयो, इतना खूबसूरत घर।
आपने भी बेसमेंट या रेनोवेशन करवाना है तो रब्ता करो, एक जीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन, टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता ना करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं। बहुत मुनासिब दाम है, अब यही आजमाइश शर्त है। गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 416-838-7837 416-838-7837।
I have a wonderful person with me. और जाहिर है अगर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर किसी शख्स का अदालती निजाम से और एज ए मुंसिफ अगर एक शख्स ने किरदार अदा किया हो तो डेफिनेटली वी काउंट ऑन दैट पर्सन के अल्फाज को और उसके फैसलों को हम अहमियत देते हैं। इस वक्त मेरे साथ हिंदुस्तान से जनाब काबिल एहतराम जस्टिस मार्कंडे साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। आप इंडिया के ज्यूरिस्ट रहे हैं एंड फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 2011 से 14 तक, और मतलब मैं आज उन्हीं से बात करना चाह रही हूँ। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू वेरी मच सर। माय एट द मोमेंट मैंने जो आपको किया है, मैं अपने लिसनर्स को पहले बताती चलूं, ऑफ कोर्स आप तमाम के की नजर में है ये वाकया जो 23 अप्रैल को हुआ एंड दैट वाज पहलगाम का वाकया। पहलगाम से 6 किलोमीटर के फासले पे बाई सरन की ये वादी है, बहुत खूबसूरत जन्नत नजीर ये वादी, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता, खच्चरों और घोड़ों के जरिए पहुंचते हैं। 23 को जब ये वाकया हुआ तो इट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट डे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ऑफ कोर्स इज इन इंडिया, पूरी दुनिया की नजरें वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वाज ट्रेवलिंग टू हमारे सऊदी अरेबिया की तरफ, सऊदी अरेबिया ने बड़ा वार्म वेलकम भी दिया, मगर जब शुरू में इस वाक्य को इतनी अहमियत नहीं दी गई, ऑल ऑफ सडन जब 2:30 बजे तक ये वाकया होता है और फिर जब पता चलता है कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ तो फिर जाहिर है तहलका मच गया। मैं आज बल्कि देख रही थी कि इसके बारे में एक FIR 2:30 पे दर्ज की गई, उस FIR में लोगों के नाम भी दर्ज थे कि किन लोगों ने ये वाकया किया। इट्स वेरी स्ट्रेंज, होता यह है कि जब भी कोई वाकया होता है बाकायदा उसकी तहकीक की जाती है और फिर उसके मुताबिक आपके पास प्रूफ्स आते हैं और फिर हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 2:30 पे ये वाकया होता है और इमीडिएटली ये अनाउंस किया जाता है कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एवरी डे इस तरह का वाकया होता है। अभी रिसेंटली हमारा जो बलूचिस्तान की ट्रेन जो आ रही थी उस पर जो वाकया हुआ, इससे पहले भी बेशुमार वाकयात हुए। वहां पे एक वाकया हुआ था जिसमें जो बार्बर्स थे उनके आईडी कार्ड देख देख के उनको मारा गया था। पाकिस्तान में हो हिंदुस्तान में हो, इट इज इक्वली तकलीफ दे है, क्योंकि जिन लोगों के घर वाले जाते हैं ये उनको मालूम है। पॉलिटिशियंस अपना रोल प्ले करते हैं, दे डू थिंग्स फॉर देयर ओन सोल पर्पस के लिए वो करते हैं। मगर मुझे याद है कि कनाडा में भी जब वाकया हुआ था तो कनाडा ने इंडिया से प्रूफ मांगे थे, इंडिया ने कनाडा से प्रूफ मांगे थे। अमेरिका का वाकया हुआ, इंडिया ने अमेरिका से प्रूफ मांगे। तो मतलब पांच चीजों को प्रूव करने के बाद हम लॉजिकली रिजॉल्व करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस तो खैर बाद में बात करेंगे, मगर वो जो एक पोलराइजेशन में मीडिया ने रोल प्ले किया, दैट इज मेरा ख्याल है इंसेन। इंसानियत तो उसका اس کی متحمل نہیں ہے. میں سر جسٹس مارکنڈے صاحب جو ہیں ان سے ہی ریکویسٹ کرتی ہوں, کیونکہ آپ کا تعلق قانون کے ساتھ بھی رہا ہے, کہ جب کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا اگر کسی چیز کو معطل کیا جاتا ہے تو کن شرائط پہ معطل ہو سکتی ہے. سر ونس اگین آئی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میری اسٹیٹ آف مائنڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. وی ڈیفینیٹلی کنڈیم واٹ ایور ہیپنڈ, مگر امیڈیٹلی کسی کنکلوژن پہ پہنچ کے نتیجہ اخذ کر کے کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا اور پولرائز کر دینا, آئی تھنک یہ کچھ تکلیف دہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟
دیکھیے, اس کو سمجھانے کے پہلے مجھے کچھ اور گہری باتیں بتانی ہوں, کیونکہ ورنہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ کیا انسیڈنٹ ہوا اور کیا ہو رہا ہے انڈین سب کانٹیننٹ. تو تھوڑا مجھے وقت دیجیے گا یہ سمجھانے کے لیے. آئی ول ریکوائر سم ٹائم.
جی سر.
دیکھیے, پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا ایک دنیا نہیں ہے. دس از ناٹ ون ورلڈ, دیر آر ٹو ورلڈز ان دس ورلڈ. ون از دا ورلڈ آف دا ڈیولپ کنٹریز, جیسے نارتھ امریکہ جہاں آپ رہ رہی ہیں, یورپ, جاپان, آسٹریلیا, چائنا از آلسو جوائن دیئر رینکس. یہ ایک دنیا ہے. اور دوسری دنیا ہے انڈر ڈیولپ کنٹری, جہاں میں رہ رہا ہوں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش. تو یہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس میں ایک بڑا اسٹرانگ رول ہے جو بڑا سیکرٹ رکھتے ہیں یہ لوگ, اور کبھی مطلب اوپنلی نہیں کہیں گے. اور وہ یہ ہے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو بیکم ڈیولپ کنٹریز ایٹ اینی کاسٹ. یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش مسٹ بی کیپٹ بیکورڈ اینڈ پوئر. یہ بڑا اسٹرانگ رول ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ناؤ لیٹ می ناؤ ہیو ٹو گو ان ٹو اکنامکس. کیونکہ دیکھیے, یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا. یہ ہلکی باتیں تو سب کر جاتے ہیں. دیکھیے, کاسٹ آف لیبر از اے بگ چنک آف دا ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن. And if the cost of labor is less, then the cost of production is less. And if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell your business rival, which means sell far below his selling price. There's competition in the market. One businessman eliminates another businessman not with bombs or guns or swords, but by underselling. It means selling the same high quality goods بٹ ایٹ اے مچ چیپر پرائز. اب دیکھیے, چائنا میں ایک ریولیوشن ہوا 1949 کے پہلے چائنا واز اے ویری پوئر اینڈ بیکورڈ کنٹری. بالکل 95% چائنیز بالکل چتھڑوں میں رہتے تھے, غریب کسان. بٹ آفٹر 1949 جو چائنیز لیڈرز پاور میں آئے, دے ریپڈلی انڈسٹریلائز چائنا اینڈ دے سیٹ اپ اے میسو انڈسٹریل بیس ان چائنا وچ از اسٹل گروئنگ. Now that massive industrial base in China, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world. Aapke western supermarkets mein, they are packed with Chinese goods, because the Chinese will sell the same high quality good which the American or Canadian manufacturer can sell, but at half the price, because this cost of labor is much less. اب دیکھیے, انڈین لیبر از ایون چیپر دین چائنیز لیبر. اگر یہ انڈین سب کانٹیننٹ ایک مائٹی انڈسٹریل جائنٹ کے روپ میں ایمرج کرے تو ویسٹرن انڈسٹری کولیپس کر جائیں گی. یہ نارتھ امریکہ, یورپ, جاپان وغیرہ ساری انڈسٹری, بیکاز ہاؤ کین دے فیس دا کمپٹیشن؟ وی ول سیل دا سیم ہائی کوالٹی گڈ ایٹ ون ہاف اور ون تھرڈ دا پرائز. ہو ول بائی دا گڈ فرام کینیڈا اور امریکہ اور جاپان اور آسٹریلیا؟ کولیپس کر جائیں گی ساری انڈسٹریز ان کی, ڈیولپ کنٹریز کی, اینڈ تھروئنگ ملینز آؤٹ آف امپلائمنٹ. سو ول دے پرمٹ دیٹ؟ نو, دے ول اپوز اٹ ٹوتھ اینڈ نیل. دے ول اپوز دس ٹرانسفارمیشن آف دا انڈین سب کانٹیننٹ انٹو اے ماڈرن انڈسٹریل جائنٹ ٹوتھ اینڈ نیل. ایک چائنا نے ناک میں دم کر رکھا ہے ویسٹرن کنٹریز کا. دوسرا چائنا پیدا ہو جائے تو جو کچھ بچا کچا ہے سب کولیپس کر جائے گا. دے ول اپوز اٹ ٹوتھ اینڈ نیل. And how do they oppose it tooth and nail? They oppose it by making Indians fight in the name of religion, caste, language, etc. Pura khel ye chal raha hai. Yes, jaise ab ye, now coming down to this attack in Pahalgam. my own understanding, it is just a, something which was organized by the developed country. Behind that is the developed country. Halanki wo peeche rehte hain, samne nahi aate. So lihaza, yes, they use their local agents. Local agents, jaise hamare yahan jo political parties are the local agents of these developed countries. Which political parties in India ki operate on the basis of religion, jaise BJP. और कुछ ऑपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे काफी हद तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वगैरह. तो लिहाजा ये सब ऑब्जेक्टिवली दे आर एजेंट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. इनका पूरा खेल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कि इंडियन सोसाइटी को पोलराइज करो, डिवाइड करो, नफरत फैलाओ, ताकि इनका वोट बैंक पक्का रहे इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन. पूरा खेल ये चल रहा. तो ये जो आपने देखा है आप पहलगाम अटैक, इसके पीछे इज द हैंड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, बट इट इज वेरी सीक्रेट, सामने नहीं आएगा. जैसे अगर आप किसी पपेट शो देखें, किसी का नाच, तो पपेटियर इज हिडन बिहाइंड द स्क्रीन, यू वोंट सी हिम. यू विल सी द पपेट्स मूविंग अराउंड, बट द रियल पर्सन हु इज ऑपरेटिंग देम इज हिडन बिहाइंड द स्क्रीन. तो ये डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑल हिडन, मगर इट इज देयर. They are the persons who are behind all this, जो नफरत है हिंदू मुस्लिम में. अब देखिए जैसे यहाँ पे पहलगाम में सेलेक्टिवली हिंदू टारगेटेड, यानी जो जिन्होंने मारा वो पेपर्स आइडेंटिफाइड द पीपल एंड दोज हु आर फाउंड टू बी हिंदू दे वर किल्ड. अब इस ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि बाकी हिंदुस्तान में हिंदू में बड़ी फीलिंग अगेंस्ट मुस्लिम ग्रो करेगी. भाई 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हिंदू. अब यहाँ के जो हिंदूज हैं इंडिया के, दे फील दे आर वेरी एंग्री एंड दे एंगर इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम्स. नाउ ऑल मुस्लिम्स आर पेंटेड एज डेविल्स, एज टेररिस्ट एंड किलर्स. पूरा खेल ये चल रहा है. तो अब इस पर्सपेक्टिव से अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है. अरे भाई आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये लोग आए, मिलिटेंट्स आए, वो मार के जंगलों में भाग गए. मगर ट्रूथ इज दैट डेवलप्ड कंट्रीज विल अपोज टूथ एंड नेल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इमर्जिंग एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ विच इट हैज ऑल द पोटेंशियल. ठीक है, बाय इंडिया आई मीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बिकॉज वी आर रियली वन कंट्री. हमको डिवाइड ये डेवलप्ड कंट्रीज ने किया ताकि हम लोग लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे. फ्रॉम मुगल टाइम्स we share the same culture, we speak Hindustani, में हम लोग बात करते हैं काफी हद तक, हिंदुस्तानी फैली हुई है सब कॉन्टिनेंट में. तो लिहाजा ये पूरा खेल ये है, बिहाइंड ऑल दिस इज द हैंड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. दे आर हिडन, दे आर सीक्रेट, सामने नहीं आएंगे. दे ऑपरेट थ्रू द लोकल एजेंट्स.
सर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, बट मेरा कंसर्न है कि पाकिस्तान में रोज टेररिस्ट के वाकयात होते हैं, और ये भी नहीं कि दो दो लोगों की डेथ होती है, दस दस लोगों की, पचास पचास, सौ सौ, चार चार सौ लोगों की डेथ हो रही है. अभी जो ट्रेन का भी जो वाकया हुआ, तो पाकिस्तान गोज थ्रू एवरी डे. हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी हैं. इससे पहले भी जो जितने वाकयात को अगर आप देख लें, चाहे आप बंबई का वाकया देख लें, चाहे आप उड़ी का वाकया देख लें, इन तमाम में क्या हासिल हसूल हुआ कि इन एवरी इवेंट कोई खास शख्सियत का टूर था हिंदुस्तान में, और कुछ इलेक्शंस के हवाले से भी बात हो रही थी. बहरहाल मैं एक गलत फेल को किसी चीज से मिक्स करना नहीं चाहती, मगर यस, आपने कहा कि पपेट्स जो हैं, पॉलिटिशियंस को बतौर पपेट इस्तेमाल किया जाता है. अभी भी मेरा ख्याल है इंडिया में कोई इलेक्शन, इंडिया में जो इंडियंस रह रहे हैं, कल मैं आपके एक जनरल साहब बासित शायद उनका नाम था, उनका सुन रही थी, हालांकि वो मुसलमान है, उन्होंने कहा इसको हम 7 अक्टूबर से कंपेयर करते हैं, 7 अक्टूबर जिसमें हमास ने अटैक किया था ऑन इसराइल. मगर आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, दे डोंट हैव एनी प्रूव. मगर विदाउट प्रूफ किसी को मुर्दे इल्जाम ठहरा देना क्या वजन रखता है?
देखिए ये बात आपकी सही है कि विदाउट प्रूफ इन्होंने फौरन अनाउंसमेंट शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का हाथ था. दैट इज ट्रू. बट अब आप ये भी देखिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। पूरा खेल है कि इंडिया और पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी बढ़ानी है, हिंदू मुस्लिम में हॉस्टिलिटी बढ़ानी, ये डेवलप कंट्रीज का पूरा खेल है। देखिए आपने समझा ही नहीं मैंने कहा क्या।
मैंने सर बिल्कुल
व्हाट आई
बिल्कुल
लिसन अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चीप लेबर हैव डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर कंट्रीज विच हैव एक्सपेंसिव लेबर प्रोवाइडेड दे बिल्ड अप अ मैसिव इंडस्ट्रियल बेस। लिहाजा अगर इंडिया भी एक इमर्ज करे एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट फॉर विच इट हैज ऑल द पोटेंशियल, हमारे पास है थाउजेंड ऑफ वेरी ब्राइट इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, लिहाजा 15-20 साल में वी कैन बिकम लाइक चाइना और यूएसए, कोई दिक्कत नहीं।
इट्स अ फिफ्थ स्टेट एट द मोमेंट।
वो जाएगा व्हाट विल हैपन टू द यूएस और कैनेडियन इकोनॉमी, प्लस उनका माल कौन खरीदेगा, वो महंगा माल। देखिए आप क्या लेबर बड़ा एक्सपेंसिव है, एवरीथिंग टर्न ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर। वेस्टर्न लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, आवर लेबर इज वेरी चीप। अगर हम लोग एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बन जाए ऑफ विच वी हैव ऑल द पोटेंशियल, तो आपकी सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी, कौन आपका माल महंगा माल खरीदेगा, आप समझिए ना। पूर्व तो कैसे रोका जाए, वो रोकने का तरीका है लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ, रेस के बेसिस पे लड़वाओ, जो अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है तो ये लोग सल्यूट मारते हैं, वैसा फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भुट्टो को क्यों फांसी लगी, क्योंकि भुट्टो वॉज गोइंग अगेंस्ट अमेरिका, ही वॉज डूइंग न्यूक्लियर डील विद फ्रांस एंड ही वॉज अप्रोचिंग रशिया एंड चाइना विच वर कम्युनिस्ट कंट्री। तो अमेरिकन बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा जनरल जियाउल हक से कि इसको हटाओ खत्म करो। तो जियाउल हक साहब ने सल्यूट मारा, वो कहा जी हुजूर जैसा आपका हुक्म, भुट्टो को निकाला और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो लिहाजा जैसा अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वैसी पाकिस्तान आर्मी उबे करती है।
ठीक सर, सर अगर आपकी सारी बात के तनाजर में अगर ये एरिया स्ट्रांग हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, तो दिस एरिया कैन बी अ पावर हाउस। मिनरल्स इस एरिया में है, एटॉमिक पावर ये एरिया है, चीप लेबर यहाँ पे है, पूरी दुनिया को ट्रेड वॉर में ये कंट्रोल कर।
मेरी बात तो समझिए ना
जी सर,
ये पोटेंशियल तो है, मगर अगर ऐसा हो जाए तो फिर वेस्टर्न इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी
जी सर,
क्योंकि उनका माल कौन खरीद, एक्सपेंसिव माल कौन खरीदेगा
जी सर। यही से अगला क्वेश्चन आया ना सर, यही से अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम लड़ पड़ते हैं तो आई थिंक सो दुनिया में पहले ही आग लगी हुई है। आज भी यूक्रेन का वाकया हुआ, आप इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान में देख लीजिएगा, देर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड। हम ग्रीनलैंड में भी अनस्टेबिलिटी चाह रहे हैं, हम जो ट्रेड वॉर है इसमें भी दुनिया में बहुत सारी अनस्टेबिलिटी आ गई। अगर वॉर हो जाती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, विच आई डाउट इट वेरी मच, मतलब जिस तरह से लोगों के जज्बात को उछाला जा रहा है और लोग ये कहते हैं नहीं बस जंग कर दो, मार दो मार, तो ये जंग तो सिर्फ बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, तो फिर तो हम अपने आप को तबाह करके बैठ जाएंगे। क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को रियलाइज करते हैं?
पॉलिटिकल लीडर्स आर पपेट्स, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही मैं क्या कह रहा हूं। चाहे हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर या चाइना वो पाकिस्तान में, तो द आर्मी आर द रियल लीडर्स, दे आर बोथ पपेट्स ऑफ द डेवलप कंट्रीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग को आपस में लड़वाया जाएगा।
ठीक सर,
इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी मेड टू फाइट बाय द रियल रूलर। जैसे वो बंदर का नाच होता है तो वो हम लोग को लड़वाया जाएगा आपस में, ताकि वी डोंट इमर्ज एज ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग।
ठीक सर। सर मैंने जो डेवलप वर्ल्ड को देखा है कि बाज़ुकात वो इंतहाई इकदाम नहीं करते। ये जो इंडिया ने पिछले साल भी पाकिस्तान को मरासला दिया था कि वो सिंतास के मुआहदे को कैंसिल करना चाहते हैं, मैंने आज वियना कन्वेंशन जो 1969 में हुआ था उसकी चंद शकों को देखा, जिसमें वो ये कि नोबडी कैन कैंसिल विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द अदर कंट्री, और उसमें ये कि देयर माइट बी अ चांस कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होके आपस में सुलह करवा दे। दुनिया में डेटा और पानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं, वो पाकिस्तान में भी है, वो इंडिया में भी पानी का मसला चल रहा है। और अगर इस मुआहिदे को कैंसिल किया जाता है तो पाकिस्तान की 80% जो हमारा आपाशी है वो दरियाई पानी से होती है। तो क्या आपके कानून की नजर में अगर ऑल दी कंडीशंस आर गिवन तो एक कंट्री एकदम से उस मुआहिदे को कैंसिल कर सकता है? और उन्होंने लास्ट ईयर भी इसका एक नोटिस दिया था कि दे वांट टू कैंसिल इंडस्ट्री बेड ट्रीटी को जिंदास के मुआहिदे।
अब आप जवाब सुनिए
जी सर,
दिस इज नॉट अ लीगल क्वेश्चन एट ऑल, इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखिए आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज करेक्ट देयर इज ग्रेट वाटर शॉर्टेज बोथ इन पाकिस्तान एज वेल एज इन इंडिया। और आजकल गर्मी आ रही है तो दोनों कंट्री में बड़ी वाटर शॉर्टेज, एंड दिस प्रॉब्लम रियली कैन बी सॉल्व व्हेन आवर सब कॉन्टिनेंट बिकम्स अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, देन वी विल हैव द टेक्नोलॉजी हाउ टू हार्वेस्ट वाटर, हाउ टू कंजर्व वाटर एंड ऑल दैट, देन अलोन दिस वाटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आप लाख सर पटक पटक के रह जाइए, आपका प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो। जहां तक ये जो सस्पेंशन ऑफ द इंडियन वाटर पीटी है, देखिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द लीगैलिटी, बट आई स्पोक टू सम फ्रेंड्स हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस, दे सेड दिस सस्पेंशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। व्हाई? बिकॉज देखिए ये दरिया से पानी तो बहेगा, पानी बहना तो रुक नहीं जाएगा। इफ यू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी इट डज नॉट मीन दैट द वाटर इन इंडस विल स्टॉप फ्लोइंग। तो अब वो अगर आप उसको पाकिस्तान जाने नहीं देंगे क्योंकि यू आर द अपर राइपेरियन स्टेट एंड पाकिस्तान इज द लोअर राइपेरियन स्टेट, तो अगर आप पानी नहीं जाने देंगे इनटू पाकिस्तान तो फिर वो इंडिया में आएगा पानी। तो इंडिया में वो स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो डैम्स नहीं है, वो बराजेस नहीं है, वो रिजर्वॉयर्स नहीं है जहां ये वाटर कलेक्ट हो सके। तो क्या फ्लड दिल्ली में फ्लड आ जाएगा क्या? वो वाटर कहां जाएगा? ये कहना आसान है कि हम वी आर सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, बट वेयर विल दैट वाटर ऑफ द इंडस गो? इफ यू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग टू पाकिस्तान इट विल कम इन टू इंडिया, और इंडिया में वो है नहीं स्ट्रक्चर, वो बराजेस, वो डैम्स, वो रिजर्वॉयर्स, वो लेक्स, कहां वो स्टोर होगा पानी? वो सब क्या फ्लड हो जाए? तो ये क्या तो दिया इन्होंने, बट हाउ विल दे इन प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेड? इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। उसमें उसको डैम्स और बराजेस और रिजर्वॉयर बनाने में 15-20 साल लगेगा, वो एक दिन में बनता है? कहां से कहां वो वाटर जाएगा? तो ये सब देखिए कहने की बातें हैं, अनाउंस तो कर दिया कि हमने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी, बट दे विल नेवर बी एबल टू इम्प्लीमेंट। और मोरोवर देखिए अभी हाल ही है पाकिस्तान में कि सिंध और पंजाब में झगड़ा हो रहा है अबाउट वाटर, वो कैनाल सिस्टम आपने देखा होगा, देयर इज ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन सिंध एंड पंजाब एंड आपस में लड़ना है। अब अगर पानी आना इंडस का भी बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि ये तो लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान विल बिकम करबला। जैसे आप तो मुस्लिम हैं, आप जानते होंगे करबला में क्या हुआ।
जी सर,
प्यास के मारे वो बेचारे बुरा हाल हो गया। तो आपके पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा तो इंडस का तो करबला हो जाएगा इन लार्ज पार्ट। तो दिस इज नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन स्टेप, ये जो किया गया है। आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट रिटायर्ड जस्ट, सो आई डोंट, इट्स नॉट इन माय हैंड, बट आई डिड नॉट अप्रूव ऑफ
दिस। आपका क्या ख्याल है कि जो इंडिया में एक इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर अराउंड द ईयर इलेक्शन होते हैं, क्या उन इलेक्शंस के हवाले से या दुनिया में, पूरी दुनिया में लाकानूनियत आती चली जा रही है। देयर वाज अ टाइम के पैक्ट्स होते थे, हमारा कनाडा की अगर आप कनाडा और अमेरिका के दरमियान ही मैं बात करूं तो हमारा एक रिवर का पैक्ट था जो 1961 में बना था। अमेरिका ने कहा है कि हम उस पैक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं या हम उस पैक्ट को खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कैलिफोर्निया की बेशुमार लेक्स और रिवर्स जो खुशक हो गए क्योंकि वाटर ट्यूब्स बना दी गई थी फॉर इरिगेशन सिस्टम, जिसकी वजह से ये लेक्स जो हैं बिल्कुल बेसन्स बन गए, वो खुशक हो गई। तो डू यू थिंक ये दुनिया की लाकानूनियत, देयर वाज अ टाइम के एक कानून होता था कि हर मुल्क की बाउंड्री है, अगर कोई वॉर होती है किसी की बाउंड्री में चला भी जाए तो दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, अब उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी लाकानूनियत का दौर है, डू यू थिंक सो?
देखिए, एक तो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज डोंट कंपेयर कैलिफोर्निया एंड अमेरिका एंड कनाडा विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वी आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, कोई एनालॉजी नहीं है। वो दे आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे हैव दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच वी डोंट हैव।
आई एम सो सॉरी सर, स्टिल दे हैव अ वाटर प्रॉब्लम। कैलिफोर्निया में जो फ्लोरिडा में जो आग लगी, आपको पता ही है कि वाटर शॉर्टेज वॉज द बिगेस्ट इश्यू फॉर दैट।
Yes, water shortage, but they will very quickly solve it because they have the technology.
ठीक सर,
जब fire हो जाए, water shortage हो जाए, बड़ी जल्दी engineers पहुंच जाते हैं, वो solve कर देते हैं problem. हमारा underdeveloped country है, कि जहाँ यहाँ आप compare करनी है with Florida and California, as if India and Pakistan of Florida and California. Please don't give these analogies. हम लोग बिल्कुल दूसरे दुनिया में रह रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूँ।
तो क्या बात है, ये भूख और गुर्बत जो है ये हमें लड़ने पे मजबूर कर देगी, डिवाइड होने पे मजबूर कर देगी, एक दूसरे का गला काटने पे मजबूर कर देगी, मजहबी नफरत फैला देगी।
पूरा खेल है डेवलप्ड कंट्रीज का कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना, बिकॉज इफ इट डज देन विल इट चीप लेबर, it will produce goods at one third the price at which the westerners produce goods, then who will buy the goods of westerners? Their industries will close down and throwing millions out of employment. samajhiye na, ek china ne naak mein dam kar rakha hai pura western world ko, to dusra frankenstein monster paida ho jaye to jo bacha khuchi industries hai west ki sab collapse kar jayengi.
theek sir,
acha we have all the potential because we have thousands of very bright engineers both in india and pakistan. मैं अक्सर आता हूँ अमेरिका, तो वहां मैं आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू यूनिवर्सिटीज लाइक बर्कले एंड स्टैनफर्ड वगैरह, एंड आई फाइंड दे आर पैक्ड विद इंडियन एंड पाकिस्तानी प्रोफेसर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ऑफ साइंस, ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ मैथमेटिक्स। वी हैव अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट, इन अदर वर्ड वी हैव ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम बैकवर्ड टू अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। 15-20 साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता
है,
मगर अगर ये हो गया तो ये वेस्टर्न इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी।
ठीक सर,
तो वो नहीं होने देंगे, वो पूरा जोर लगा देंगे। भाई ये सब जैसे जो पहलगाम अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ और जो ये कम्युनल राइट्स होते हैं, ये ऑल आर ऑर्गेनाइज बाय डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू द लोकल एजेंट्स, खुद नहीं करते हैं, उनके लोकल एजेंट, मोस्ट ऑफ द लोकल एजेंट्स आर द इंडियन पॉलिटिशियंस और यो पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स, दे आर नथिंग बट द एजेंट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। आपके पाकिस्तान में द रियल रूलर्स आर द आर्मी, सबके लड़के लड़कियां या तो उनको नौकरी मिल गई वर्ल्ड बैंक में विद अ वेरी हाई सैलरी और IMF में विद अ वेरी हाई सैलरी और इन सब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विद अ वेरी हाई सैलरी, या उनके लड़के जनरल्स के लड़के लड़कियों को एडमिशन विद फुल स्कॉलरशिप मिल गई हार्वर्ड येल में। ये ब्राइट देने का तरीका, सोफिस्टिकेटेड तरीका है, रिश्वत देने के कई तरीके होते हैं, इट्स नॉट डायरेक्टली पेड इन कैश। तो ये सारे जनरल दे ऑल बीन बॉट ओवर बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, पर्टिकुलरली अमेरिका, जो हुक्म आता है अमेरिका से दे फॉलो इट। ये जनरल मुनीर कुछ नहीं है, इज नथिंग बट अमेरिकन एजेंट। सिमिलरली आवर इंडियन पॉलिटिशियंस एजेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, और इनका पूरा खेल है कि जनता को लड़वाना, पब्लिक को नफरत फैलाना, पोलराइज करना, ताकि वोट बैंक पक्का रहे, पूरा खेल चल रहा है। देखिए इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में।
जी सर,
कहीं ना कहीं या तो चुनाव होता रहता है या चुनाव की तैयारी होती रहती है। यानी परमानेंटली इंडिया इज इन इलेक्शन मोड, यानी इलेक्शन के माहौल में हमेशा इंडिया रहता है। तो लिहाजा इलेक्शन में वोट पाने के लिए कास्ट और कम्युनल वोट बैंक चाहिए। अगर आपको इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ समझ है, यू शुड नो दैट इंडियन पॉलिटिक्स लार्जली रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स, और कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस व्हिच हैव टू बी डिस्ट्रॉयड इफ इंडिया हैज टू प्रोग्रेस। बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्दर एंट्रेंचेस देम, और मजबूत कर देता है, क्योंकि इसी पे चलती है पूरी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स। ये सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब नफरत फैलाते हैं, पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, ताकि इनका वोट बैंक पक्का रहे। तो लिहाजा लड़वाना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, कास्ट के बेसिस लड़वाना, इसी से इनकी पॉलिटिक्स चलती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रियलिटीज, ये इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं। देखिये आप लोग, प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है ना कि आप गहराई में नहीं जाते, आपको मालूम ही नहीं कि खेल क्या चल रहा है दुनिया में। खेल चल रहा है कि डेवलप कंट्रीज आर एडमेंट दैट अंडर डेवलप कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप कंट्री, बिकॉज इफ दे डू देन विद देयर चीप लेबर दे विल अंडर सेल अस एंड डिस्ट्रॉय आवर इंडस्ट्रीज एंड थ्रो मिलियंस आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो वारदात होते रहते हैं, ये पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, कहीं हुआ, ये सब पूरा खेल है कि पब्लिक को आपस में लड़वाओ, ताकि ये लड़ रहे हैं और यूनाइटेड होके एक पीपल्स स्ट्रगल नहीं लॉन्च करें, माइटी हिस्टोरिकल पीपल्स स्ट्रगल नहीं लॉन्च करें फॉर सेटिंग अप अ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर अंडर विच द कंट्री रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल स्टेडिली राइजेज एंड पीपल गेट डिसेंट लाइफ। देखिए एक चीज आप समझिए, कीप इट इन माइंड, द टेस्ट ऑफ एवरी पोलिटिकल एक्टिविटी एंड एवरी पोलिटिकल सिस्टम इज वन एंड ओनली वन, एंड दैट इज डज इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, डज इट गिव पीपल बेटर लाइफ। बस यही है पूरा टेस्ट, यही। अब जैसे लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 जो अबॉलिश हो गया कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, मेरी ओपिनियन पूछी गई, मैंने कहा इट इज इररिलेवेंट, चाहे अबॉलिश करो आर्टिकल 370 या रिटेन करो आर्टिकल 370, हाउ डज इट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी कश्मीरी पीपल, इट डजंट अफेक्ट। तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट चीज है, मगर उस पर हु हल्ला मच रहा है कि अरे मर गए आर्टिकल 370 अबॉलिश हो गए, हाउ डज इट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द कश्मीरी पीपल, इस पे फोकस करिए।
नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं तो बल्कि वो जनाब कश्मीर के जो अब्दुल्ला साहब हैं, ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, ही इज ऑल्सो अ पपेट, वो जो खातून है शी इज ऑल्सो अ पपेट, और लीडर्स आर पपेट्स एक दूसरे के लिए अपनी पोजीशन, एंड दे आर बिकमिंग रिच डे बाय डे, अवाम इज गेटिंग पुअर डे बाय डे। सर आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी मौजूदगी में ये बात कहना चाहती हूँ, जिंदगी में एक तरफ हम कहते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है, और दूसरी तरफ हम आपस में ही अपने खित्ते को अगर कमजोर से कमजोर,
उसका वजह है मैंने कई बार कहा बेवकूफ लोगों को बेवकूफ तो बनाया जाएगा, 90% इंडियंस आर इडियट्स एंड 90% पाकिस्तानी आर इडियट्स, सो इट्स वेरी इजी टू टेक देम फॉर अ राइड। आपको ये कहना कि साहब हिंदू को कहना कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, और मुसलमान को कहना कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, इट इज वेरी इजी एंड दे गेट पर्सुएडेड बाय दिस, जबकि हकीकत क्या है, ना हिंदू का दुश्मन है मुसलमान, ना मुसलमान का दुश्मन है हिंदू, हम दोनों के दुश्मन है गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, दीज आर आवर एनिमीज, नाइदर इंडिया इज द एनिमी ऑफ पाकिस्तान, नो पाकिस्तान इज द एनिमी ऑफ इंडिया, अ कॉमन एनिमी आर दीज मैसिव ह्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस एंड लैक ऑफ गुड एजुकेशन, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, ये मैसिव प्रॉब्लम, दे आर आवर एनिमीज, हाउ कैन टू पुअर पीपल बी ईच अदर एनिमीज, गरीब आदमी, दो गरीब आदमी एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, उनको तो हाथ मिला के लड़ना है अगेंस्ट जो कॉमन एनिमी दैट इज गुर्बत एंड बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी वगैरह। तो लिहाजा मैं ये बार बार बताता हूँ हिंदुस्तानियों को भी, पाकिस्तानियों को, कि तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो, तुमको तो यू आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू शुड ज्वाइन हैंड्स एंड फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज एंड हंगर एंड सो ऑन. दिस इज व्हाट आई वांट टू से.
सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी बात जरूर करेंगे. आई विश कि किसी के दिल पे ये बात असर जरूर करे कि वी हैव टू लुक एट कि जो हमारी एक्चुअल दुश्मन कौन है. और हमारे पास तालीम हुनर है, दिमाग, अगर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें तो वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस एनिमी. सर आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से. एहसान मानू सर.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
अपने प्यारों को पैसे भेजें.